हरे कृष्ण।
श्रीमद् भागवतम दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय श्लोक संख्या 6 और 7। इस आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरंग से कृपा की याचना करते हुए मंगलाचरण करेंगे, ताकि हम जो अध्ययन कर रहे हैं उसका पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, ॐ नमो भगवते वासुदेवाय, कृष्णाय वासुदेवाय, देवकी नंदनाय च, नंदगोपकुमाराय, गोविंदाय नमो नमः। यत्कीर्तनं यत् स्मरणं यदीक्षणं, यद्वन्दनं यत् श्रवणं यदर्हणं, लोकस्य सत्यो विधुनोति कल्मषं, तस्मै सुभद्र श्रवसे नमो नमः। किरात होणा द्रपुलिंद पुलकशा, आभीर्य शुंभा यवनाक सादया, येनी च पापा यदपाश्रयाश्रया, शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभविष्णवे नमः। कृष्णा त्वदीय पद पंकज पञ्चरातम्, अद्यैव मे विशतु मानसराजहंसा, प्राणाप्रयाण समये कफवात पित्त, कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्त्वा, आराध्यो भगवान् ब्रजेशतनाय, तत्थाम वृन्दावनम् रम्या काचिदुपासना व्रजवधू, वर्गेन या कल्पिता, श्रीमद्भागवतम् प्रमाणममालम्, प्रेम पुमर्थो महा, श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं, तत्राधरो नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं, दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जायामुदीरये, नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया, भगवती युत्तमश्लोके भक्तिरभवति नैष्ठिके, पञ्चतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारभक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानन्द श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ग्रंथ श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद अध्याय पहला श्लोक संख्या 6। सुखदेव गोस्वामी जी के मुखारविंद से निकली हुई इन अमृतमयी शब्द रूपी गंगा में स्नान कीजिए और मेरे साथ साथ उच्चारण करने का प्रयास कीजिए। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। एतावान् सांख्य योगाभ्याम स्वधर्म परिनिष्ठया जन्मलाभ परः पुंसां अन्ते नारायण स्मृति। शब्दार्थ, एतावान् ये सब सांख्य पदार्थ तथा आत्मा विषयक पूर्ण ज्ञान योगाभ्यान योग शक्ति के ज्ञान से स्वधर्म विशिष्ट वृत्ति परक कर्तव्य पुंसाम पुरुष का अंते अंत में नारायण स्मृति यानी भगवान की स्मृति याद। अनुवाद, पदार्थ तथा आत्मा के पूर्ण ज्ञान से योग शक्ति के अभ्यास से या स्वधर्म का बलिभांति पालन करने से मानव जीवन की जो सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त की जा सकती है वह है जीवन के अंत में भगवान का स्मरण करना। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि नारायण दिव्य परम पुरुष हैं, जो इस भौतिक सृष्टि से परे हैं। प्रत्येक वस्तु जिसका सृजन पालन तथा अंत में संहार होता है वह महत्तत्व यानी भौतिक सिद्धांत की सीमा के अंतर्गत है और भौतिक जगत के नाम से विख्यात है, किंतु नारायण या भगवान का अस्तित्व इस महत्तत्व की परिधि के अंतर्गत नहीं आता। अतएव नारायण के नाम रूप गुण इत्यादि भौतिक जगत की सीमा के परे हैं। मनुष्य को सांख्य दर्शन से जो पदार्थ या आत्मा को पृथक पृथक करता है अथवा योग शक्ति के अनुशूलन से जिससे मनुष्य इस ब्रह्मांड के भीतर या बाहर के किसी भी ग्रह तक पहुंचने में समर्थ बनता है या धार्मिक कर्तव्य पालन करने से सर्वोच्च सिद्धि प्राप्त हो सकती है, बशर्ते ये कि मनुष्य नारायण स्मृति अवस्था को अर्थात भगवान के निरंतर स्मरण की अवस्था को प्राप्त कर ले। यदि शुद्ध भक्त की संगति से ही यह संभव है, क्योंकि भक्त समस्त ज्ञानियों योगियों या कर्मियों के दिव्य कार्यकलापों को शास्त्रों नमोदित वृत्ति परक कार्यों से साज संवार सकता है। इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरणों से भरा पड़ा है, यथा सनक आदि ऋषि या नव प्रसिद्ध योगेंद्र जिन्होंने भगवान की भक्तिमयी सेवा में सुस्थापित होने के बाद ही सिद्धि प्राप्त की। भगवान का कोई भी भक्त ज्ञानियों या योगियों द्वारा अपनाई गई अन्य विधियों को ग्रहण करके भक्ति के मार्ग से कभी विचलित नहीं हुआ। प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य विशेष में चरम सिद्धि पाने के लिए उत्सुक रहता है, और जैसा कि यहाँ पर संकेत किया गया है कि ऐसी सिद्धि नारायण स्मृति है, जिसके लिए हर एक को आत्मोत्तम प्रयास करना चाहिए। दूसरे शब्दों में, जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे आगे ही बढ़ता रहे। श्रील प्रभुपाद की जय। मूकं कुरुतु वाचालम् भंगुं लंघयति गिरं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणं। ग्रंथा श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। दूसरा स्कंद प्रथम अध्याय, जिसमें शुकदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज के प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। परीक्षित महाराज का प्रश्न था कि पुरुषस्य येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा, एक व्यक्ति का जीवन के सब समय में क्या कर्तव्य है, और स्पेशली जो मृत्यु के बिल्कुल निकट है उसे क्या करना चाहिए, क्या पूरा जीवन जीव को करना चाहिए। यत् श्रोतव्यम् अथो जप्यम्, यत् कर्तव्यम् निर्भी प्रभो, स्मर्तव्यम् भजनीयम् वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम्। आप बताइए कि एक जीव को क्या श्रवण करना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, अपनी इंद्रियों के द्वारा क्या कर्तव्य है उसका, स्मरण करने योग्य कौन है, भजनीय कौन है, किसका भजन करना चाहिए, और इसके विपरीत जो कुछ है वो सब भी बताइए। तो परीक्षित महाराज के इस प्रश्न को सुनकर शुकदेव गोस्वामी बहुत प्रसन्न हुए। पहले विपरीत का बताया, और फिर जब वास्तविक उत्तर देने की बात आई तब उन्होंने श्लोक नंबर 5 में बताया, तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि, श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्चेच्छता भयम्। अगर वास्तव में किसी को भय से छूटना है, कोई वास्तव में अभय चाहता है, जन्म मरण के चक्कर से छूटना चाहता है, तो तस्मात् भारत, हे भरतवंशी, आप भरतवंशी हो, महाराजा भरत के कुल में से हो, और मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आप इस बात को भली भांति समझ सकते हो कि भगवान हरि के विषय में श्रवण करना, कीर्तन करना, उनका स्मरण करना ही वास्तविक सिद्धि है। इसके अतिरिक्त तो और कुछ नहीं करने के लिए, यही कार्य करना है एक व्यक्ति को जीवन भर, और स्पेशली मरणासन जो म्रियमाण जो व्यक्ति है उसे यही कार्य करना है, भगवान के विषय में श्रवण करना है, भगवान के विषय में कीर्तन करना है, भगवान श्री कृष्ण को ही स्मरण करना है, इसके अतिरिक्त और कोई कार्य नहीं है। तो अब जैसा कि आप सब जानते हो कि वहां पर तो कितने सारे लोग होंगे, बहुत सारे ऋषि मुनि जमा हुए थे, बहुत सारे बड़े बड़े ऋषि मुनि वहां पर एकत्रित थे, और सबका मुनियों का अलग अलग मत होता है। तो मानो कोई मुनि इत्यादि खड़े होकर बोलते हैं कि आप ऐसे कैसे बता सकते हो, ये आप कैसे कह सकते हैं कि केवल कृष्ण का श्रवण कीर्तन ही जीवन की सिद्धि प्राप्त करा सकता है। श्रवण और कीर्तन के अतिरिक्त भी तो बहुत सारे मार्ग हैं, जिन मार्गों के ऊपर चलकर जीवन की सफलता प्राप्त की जा सकती है। तो आप उन सारे मार्गों की क्यों नहीं संस्तुति बता रहे हो, उनके विषय में क्यों नहीं बता रहे हो, जैसे सांख्य योग है, योग अष्टांग योग है, स्वधर्म का परिनिष्ठा के साथ पालन है, उनके विषय में क्यों नहीं बता रहे हो। तब शुकदेव गोस्वामी कहते हैं, एतावान् सांख्य योगाभ्याम् स्वधर्म परिनिष्ठया। एतावान्, ये जो सब हैं वास्तविक कार्य तो उन्होंने बता दिया कि भगवान के विषय में श्रवण करना है, कृष्ण के विषय में कीर्तन करना, उनका स्मरण करना, तो वही सब कुछ है एतावान, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। और ये जो सांख्य योग या योगाभ्यास या स्वधर्म परिनिष्ठा, ये सब जो है उनके द्वारा भी जीवन की सिद्धि प्राप्त की जा सकती है, यदि यदि क्या, जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मरति। यदि कंक्लूशन ये है, अगर सांख्य योग के द्वारा, सांख्य योग का मतलब होता है कि आत्मा और देह के विषय में पूर्ण ज्ञान होना, यानी देह को आत्मा से पूरी तरह से अलग करके जो समझता है कि मतलब स्पिरिट और मैटर, मैटर को बहुत अच्छी तरीके से जान जाता है, अपने आप को आत्मा समझकर कंप्लीटली इंद्रिय निग्रह करता है, तो कहा जाएगा कि वो सांख्य योग में निपुण है। अगर इंद्रिय निग्रह कर भी रहा है और आत्मा और शरीर का सांख्य योग उसे पूरी तरह से या समझ में आ भी गया है तो भी, और उसके बाद है योगाभ्याम। योगाभ्याम का मतलब है ध्यान करना, ध्यान से ध्यान में बैठना और ध्यान की सारी, जैसे योग, अष्टांग योग की जितनी भी सिद्धियां हैं, यम नियम आसन प्राणायाम योग धारणा समाधि, ये सब इसमें अगर वो निपुण है, बहुत अच्छी तरीके से योग साधना कर रहा है। और तीसरा गुण है स्वधर्म परिनिष्ठया, यानी वर्णाश्रम धर्म के अनुसार बिल्कुल 100% परफेक्ट जीवन गुजार रहा है, अपराध नहीं कर रहा है, अपने स्वधर्म को बहुत अच्छे तरीके से पालन कर रहा है, तो उसका मीटर क्या निकलना चाहिए, कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए। सांख्य योग तो वो सही कर रहा है, लेकिन कंक्लूजन क्या निकलना चाहिए, आगे बता रहे हैं, अंते नारायण स्मृति। ये सारे कार्य यदि कोई कर रहा है और उसके साथ में अगर निष्कर्ष रूप में उसे भगवत स्मृति हो रही है, भगवान को स्मरण कर पर, मतलब वो भगवान को स्मरण कंटिन्यूस चल रहा है, तो ही समझो कि उसका सांख्य योग सही है, उसका योग अष्टांग योग सही है और स्वधर्म पालन सही है। लेकिन यदि यह निष्कर्ष नहीं मिलता है, यानी जो भी आप कर रहे हो, जन्म लाभ परे पुंसाम, पुंसाम का मतलब होता है मनुष्य का, वास्तव में भक्तों ये मनुष्य जीवन बहुत कठिनाई से मिलता है, और एक बात तो याद रखने की है कि ये मनुष्य जीवन भोग करने के लिए नहीं मिला है, ये मनुष्य जीवन इंद्रिय तृप्ति के लिए मिला ही नहीं है, इंद्रिय तृप्ति के लिए तो पशु जीवन है, पशुओं को इंद्रिय तृप्ति में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, इस मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य के शरीर में कोई भोग कर ही नहीं सकता है, केवल मूर्खता है, ये मूर्ख ही सोचते हैं कि इस शरीर के द्वारा मैं भोग करूंगा, जो करके देखते हैं उनसे पूछ के देख लो क्या आप संतुष्ट होते हो। शरीर ये तो, ये जो शरीर है वो सदैव रोगों से ग्रस्त रहता है, एक तो इसके रोग समाप्त नहीं होते, ज्यादा खा देते हैं तो बर्दाश्त नहीं होता है, ज्यादा सो लेते हैं तो परेशान हो जाते, कोई कार्य करते, कोई इंद्रिय तृप्ति का कोई भी कार्य थोड़ा सा भी करने के बाद ये शरीर साथ नहीं देता। मनुष्य शरीर के ये भोग भोगने के लिए दिया नहीं भगवान ने, ये मनुष्य शरीर जो है इसको भगवान ने बनाया, उसकी मशीन इसी तरह से बनाई है कि उसके द्वारा केवल भगवत स्मृति की जा सके। मनुष्य से अधिक इंद्रिय तृप्ति, कोई भी इंद्रिय तृप्ति का कार्य, जैसे खाना, जैसे सेक्सुअल डिजायर्स पूरी करना और जो भी है, मनुष्य से बहुत अच्छे तरीके से और बहुत सफिशिएंट तरीके से पशु लोग करते हैं। ये मनुष्य शरीर तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए मिला है, भगवान ने आंखें दी है सिर्फ अपने दर्शन करने के, भगवान ने जो कान दिए हैं केवल और केवल कृष्ण कथा श्रवण करने के, ये मुख भगवान ने दिया है मन, ये तभी तो साफ लिखा है इतने सारे ऋषि मुनियों की सभा में इतना क्लियर उत्तर दे रहे हैं सुखदेव गोस्वामी, इतना बहुत बड़ी बात है ये, बहुत सारे ऋषि मुनि हैं वहाँ पर, सूत गोस्वामी जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ पर 88,000 ऋषि मुनि हैं, सुखदेव गोस्वामी जहाँ पर बैठे वहाँ पर तो हजारों ऋषि मुनि कब से प्रतीक्षा कर रहे थे सुखदेव गोस्वामी के आगमन की,
तो इतने सारे ऋषि मुनियों के बीच में ये कंक्लूजन निकालना कि कुछ भी हो जाए, मनुष्य का जीवन मिला है तो उसका उसका उसकी सफलता क्या है कि भगवान के साथ भगवान की स्मृति हो जाए बस। तो कुछ लोग यहाँ पर ये बताते हैं अंते नारायण स्मृति का मतलब होता है जीवन के अंत में भगवान याद आ जाए, जीवन भर भले जो भी करते रहो अंत में भगवान याद आ जाए। लेकिन वास्तविक ये इसका ट्रांसलेट नहीं है। अंते नारायण स्मृति, अंत का मतलब होता है निष्कर्ष, कंक्लूजन ये निकलना चाहिए आप क्या कर रहे हो, क्या उस कार्य में, चाहे आप योग कर रहे हो, चाहे आप सांख्य योग कर रहे हो, चाहे योग साधना अष्टांग योग कर रहे हो, या फिर स्वधर्म का अच्छे तरीके से पालन कर रहे हो, यदि वो कार्य करते हुए भगवान का स्मरण होता है तो इसको कहते हैं अंते, यानी कंक्लूजन ये है कि इसके द्वारा आपको भगवान का स्मरण करना चाहिए। और यदि सच्ची बात की जाए तो सांख्य योग के द्वारा या अष्टांग योग के द्वारा या स्वधर्म पालन के द्वारा भगवान की स्मृति होती है, इसमें कोई गारंटी नहीं है, है ना। बहुत बहुत समय के बाद यम नियम धारणा समाधि प्राणायाम करते करते ध्यान लगेगा ना जब, तब भगवान को स्मरण कर पाएंगे, वरना तो ये इसी में समय खत्म हो जाएगा, सिद्धि आएगी उसी में परेशान हो जाएगा। ये सांख्य योग में जब ज्ञान बहुत बहुत बढ़ जाता है ना तो भगवान को स्मरण नहीं करता, तब तो फिर अपने आप को ही भगवान मानने लग जाता है। और स्वधर्म पालन में तो स्वधर्म पालन करते करते उसी के अंदर आसक्ति हो जाती है। तो इनके द्वारा यदि भगवान के अंदर स्मृति होती है तब तो कहेंगे कि मीटर सही बता रहा है। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप कोई भी कार्य कर रहे हो उसका रिजल्ट क्या निकलना चाहिए, भगवान का स्मरण आना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है फिर तो ठीक है, लेकिन यदि भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है तो समझो सब व्यर्थ है। जो भी किया, चाहे सांख्य योग किया, अष्टांग योग किया, स्वधर्म का पालन किया, तो भी श्रम एव केवलम, जैसे हमने पहले पढ़ा था प्रथम स्कंद में, धर्म सुनिश्चित पुंसाम विश्वक सेन कथा सुयः नोत्पादयेद यदि रतिम श्रम एव ही केवलम। यदि स्वधर्म का अच्छे तरीके से पालन करते हो, सांख्य योग को बहुत अच्छे तरीके से करते हो, योग अभ्यास में एकदम परफेक्ट हो, लेकिन यदि भगवान का स्मरण नहीं हो रहा है, भगवान की कथा में रुचि नहीं हो रही है, भगवान का जप नहीं हो पा रहा है, तो फिर ये सब फिजूल है। भगवान का स्मरण होना जरूरी है। और अगर ये सांख्य योग के द्वारा या कर्म योगाभ्यास के द्वारा स्वधर्म के पालन के द्वारा ये भगवान का स्मरण देखा जाता है, बहुत कम है। लेकिन श्रवण और कीर्तन यदि हम करते हैं, ये सारी विद्या नहीं करते हैं, केवल जो हमें पहले श्लोक नंबर 5 में बताया गया, सुखदेव गोस्वामी ने बताया कि श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यश्च चताभयम्, कि भगवान को के विषय में श्रवण करना है, भगवान का कीर्तन करना है और भगवान को स्मरण करना, तो वो शुरू से ही होता रहेगा। जैसे ही आपने श्रवण करना शुरू किया है ना, उसी टाइम पर आपका स्मरण बनता रहेगा। जैसे ही आपने जप के लिए माला के अंदर हाथ डाला ना, जैसे ही पहला मंत्र निकला, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम, भली माला पूरी नहीं होती है, शुरू से ही आपका जो कंक्लूजन है ना वो पूरा हो रहा है, उसी टाइम पर आपका स्मरण क्या है यहाँ पर बता, जन्म लाभ परे पुंसाम अंते नारायण स्मृति। ये अगर होता है, नारायण के अंदर मन लग रहा है, मन में यदि नारायण की स्मृति हो जाती है तो समझो सही हो रहा है, बिल्कुल एकदम परफेक्ट हो रहा है। लेकिन यदि भगवान की स्मृति नहीं हो रही है तो कुछ भी करने का कोई भी लाभ नहीं है। वास्तव में यही जो श्रवण और कीर्तन है वही भगवान में प्रेम उत्पन्न करेगा, और प्रेम उत्पन्न होने के बाद बस यही तो करना है, है ना। तो साध्य भी यही है और साधन भी यही है। ऐसा नहीं है कि ये श्रवण कीर्तन करने के बाद कुछ और करके फिर भगवान में प्रेम, नहीं, ये श्रवण और कीर्तन करते 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 भगवान के अंदर प्रेम उत्पन्न हो जाएगा। वो जो साध्य है ना, ये तरीका भी यही है, प्रेम उत्पन्न होगा और प्रेम जो करते हैं भगवान के साथ उसको यही करना है, भगवान के विषय में श्रवण करना है, भगवान की कथाओं को श्रवण करना है और भगवान के पवित्र नाम का जप करना है। तो इतना आनंददायक है ये कि भगवान के विषय में श्रवण करते जाएंगे, भगवान की कथाओं को श्रवण करेंगे, भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे, तो इसी से जीवन सफल होगा। इससे बढ़कर दूसरा और कोई साधन नहीं है। मतलब जैसे महाराजा परीक्षित ने पूछा था कि आप बताइए कि जीवन की सफलता क्या है, क्या मिल जाएगा कि तो माना जाएगा कि ये जीवन सफल है इसका। और वैसे भी अंत समय में भगवान तभी याद आएंगे जब हमें जीवन में भगवान याद आएंगे। समय तो बहुत महत्वपूर्ण होता है। भगवान कहते हैं अंतकाले च माम एव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम। लेकिन अंतकाल में हम अपनी इच्छा से भगवान को याद नहीं कर सकते, इसीलिए भगवान बताते हैं कि तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मर युद्ध च। सर्वेषु कालेषु, आपको अंत समय में मैं तभी याद आऊंगा जब तुम सब समय मुझे स्मरण करोगे। तो कोई भी कार्य आप कर रहे हो उसकी सिद्धि क्या है, यही पूछा महाराजा परीक्षित ने। अतः पृच्छामि संसिद्धिम्। सिद्धि क्या है, जीवन की सफलता क्या है? अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो कैसे माना जाएगा कि वो कार्य सफल हो रहा है? तभी सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जीवन की सफलता यही है कि पग पग पर भगवान का स्मरण होना चाहिए। जन्म लाभ परे पुंसाम अंत नारायण स्मृति। यदि भगवान का स्मरण हो रहा है तो कोई भी कार्य कर रहे हो वो सफल हो रहा है, लेकिन यदि कृष्ण का स्मरण नहीं हो रहा है तो समझो वो कार्य किसी काम का नहीं, बेकार है, किसी काम का नहीं है वो काम। चाहे वो योग साधना हो, चाहे सांख्य योग हो, या स्वधर्म का परिनिष्ठा के साथ पालन हो। इसीलिए श्री प्रभुपाद जी कहते हैं इतिहास आध्यात्मिक सिद्धि की प्राप्ति के उदाहरण से भरा भरा है, यथा सनकादि ऋषि या नौ योगेंद्र, जिन्होंने भगवान की भक्तिमय सेवा में सुस्थापित होने के बाद ही सिद्धि प्राप्त की। पहले भले ही नौ योगेंद्र बहुत बड़े योगी थे या फिर सनकादि बहुत बड़े ज्ञानी थे, लेकिन वो सिद्धि नहीं है। सिद्धि तो तभी प्राप्त हुई जब भगवान की भक्ति उन्होंने स्वीकार की। भगवान का भक्त जब तक नहीं बन जाते, जब तक कृष्ण से प्रेम नहीं हो जाता, तब तक चाहे कितना ही बड़ा योगी बन जाए, कितना ही ध्यान साधना कर ले, लेकिन वो सिद्धि नहीं है। इसीलिए जीवन को इस प्रकार से ढालना चाहिए कि जीवन के पग पग पर मनुष्य भगवान के स्मरण में आगे और आगे बढ़ता रहे। तो ऐसा हो सकता है कि इतना सुनने के बाद पूछे सारे ऋषिगण कि इस तथ्य को साबित करने के लिए आपके पास प्रमाण क्या है, आप कोई प्रमाण दे सकते हो तब, क्योंकि किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए प्रमाण क्या होता है, पूर्व के आचार्यों का प्रमाण कि पहले के अच्छे लोगों ने, संत महात्माओं ने जो किया वही सदाचार है। क्या पहले कभी किसी ने ऐसा किया है? तो बताते हैं सुखदेव गोस्वामी कहते हैं प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेदत नैर्गुण्य स्थारमन्ते स्मा गुणानु कथने हरि। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेदत नैर्गुण्य स्थारमन्ते स्मा गुणानु कथने हरे। प्रायेण मुनयो राजन निवृत्ता विधिषेदत नैर्गुण्य स्थारमन्ते स्मा गुणानु कथने हरे। प्रायेण मुनयो, प्रायेण का मतलब होता है लगभग सारे, लगभग 99%। प्रायेण का मतलब होता है मुख्यतः, ऑलमोस्ट सारे जितने भी मुनि हैं, हे राजन निवृत्ता विधिषेधता। निवृत्ता यानी जो बहुत ज्यादा निवृत्त हैं, जो भौतिक आसक्ति से बिल्कुल आसक्ति को समाप्त करके आगे ऊपर उठे हुए हैं,
विधिषेधता यानी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से बहुत ऊपर हो गए हैं, उन सारे ऋषियों ने नैर्गुणीय जो तीन गुणों से ऊपर हैं, वो क्या करते हैं, रमन्ते स्म गुणानुकथने हरि, रमन्ते वो सभी आनंद लेते हैं एक ही काम में, स्म प्रकट रूप से उनको देखा गया है कि जो आध्यात्मिकवादी हैं, जो भौतिकता की आसक्ति को समाप्त कर चुके हैं, जो निवृत्त हो चुके हैं, जो तीनों गुणों से ऊपर हो चुके हैं, जो आध्यात्मिकवाद की बहुत चरम सीमा पर है, वो क्या करते हैं, नैर्गुणीयस्था रमन्ते, वो रमन्ते हैं। रमन्ते का क्या मतलब है कि ऐसा नहीं है कि उनको जबरदस्ती उसके ऊपर कोई चीज ला दी जाए। रमन्ते का मतलब होता है जब कोई बगैर किसी फोर्स के, बिना फोर्स के या दबाव के कोई कार्य करे और उसमें आनंद ले। और वो किस में आनंद लेते हैं, रमन्ते स्म गुणानुकथने हरि, वो सब प्रकार से भगवान की गुणों को कथन करने में ही उनको आनंद आता है। आनंद रमन्ते कैसे, जैसे बच्चे हैं उनको हम हमेशा बोलते हैं ना कि सारा टाइम आप मत खेला करो, आप थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ, लेकिन फिर भी उनका स्वभाव है, उनको आनंद आता है, वो खेलना चाहते हैं। हालांकि उनको कोई बोलता नहीं है कि आप खेलो, उनको उनकी इच्छा होती है कि हम खेलें, है ना। उसी तरह से शास्त्र अक्सर एक और भी उदाहरण देता है, जैसे एक युवकी जो होती है, युवती से जब प्रेम करता है तो उसमें इतना रम जाता है, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं देता कि अब आप उसी से उसी के विषय में सोचो या आप उससे कुछ प्रेम के बारे में इस तरह बात करो, उसको कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है, बस वो मतलब बल्कि है ना समाज तो उसको और भी बंधित करता है ना, बंधन होते हैं कि नहीं आप ऐसा मत करो, युवती को कहा जाता है कि देखो इससे बहुत बदनामी होगी, आप इससे इस तरह बात नहीं करो या इससे इस तरह चैटिंग, लेकिन फिर भी क्या होता है, क्योंकि उसको उसी के अंदर आनंद आता है तो वो वही कार्य करना चाहते हैं चाहे कितने ही बंधन क्यों ना हो। उसी तरह से यहाँ बताया गया है रमन्ते, जो बड़े बड़े मुनि हैं, जो आध्यात्मिकवादी हैं, वो सदैव आनंद लेते हैं, किसमें, गुणानुकथन हरि, और कोई काम नहीं करते, वो कोई सांख्य योग का अभ्यास नहीं करते, वो कोई योग अभ्यास नहीं करते, वो स्वधर्म पालन में कोई निष्ठा नहीं रखते, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान की कथाओं को श्रवण करने में, भगवान के विषय में बोलने में, भगवान का कीर्तन करने में उनको आनंद आता है। इसके अतिरिक्त तो और कोई आनंद का और कोई तरीका ही नहीं है, इतना प्रेम होता है। सारे ऋषि गण जो यहाँ पर बैठे हुए हैं उनके समक्ष सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं कि जो भी बड़े बड़े ऋषि मुनि हैं उनका यही निष्कर्ष है, यही एकमात्र साधन है कि भगवान की कथाओं को श्रवण किया या भगवान की कथाओं का गुणगान किया जाए। स्म गुणानुकथने हरि, बस भगवान की कथाओं के अंदर जिसको आनंद आ गया समझो वही सफल है अपने जीवन में, इसके अतिरिक्त तो और कोई सफलता नहीं है। इतना उनका मन पवित्र हो जाता है, इनके मन के अंदर इतनी शुद्धता आ जाती है, जो बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, जो वास्तव में जो आध्यात्मवादी होते हैं, वो भगवान के गुणों के कथन में ही आनंद लेते हैं। संसार में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है वो सब उनको बिल्कुल आकर्षित करता ही नहीं है, वो इतने शुद्ध हो जाते हैं, इतने ट्रांसेंडेंटल हो जाते हैं, उनका मन जो होता है वो सेट हो जाता है, वो सदैव भगवान के गुणों के कथन में रमन्ते गुणानुकथने। अभी उन्होंने प्रायण क्यों बोला है, क्योंकि ज्यादातर टाइम तो वो भगवान की कथाओं को करने में लगाते हैं, भगवान के विषय में गुणगान करने में लगाते हैं, और कुछ समय वो ऐसा ढूंढते हैं जिसमें वो श्रवण कर सके, वो श्रवण और कथन के अतिरिक्त और कोई उनका लाभ नहीं होता है। अगर देखा जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनि, यहाँ सुखदेव गोस्वामी क्या कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी महामुनि हैं, सारे ऋषियों के बीच में उनको व्यास आसन पर बिठाया गया, वो कुछ बता रहे हैं कि भाई योग अभ्यास करो, अभी सांख्य योग करो, अभी अष्टांग योग करो, नहीं वो कथा कर रहे हैं और परीक्षित महाराज और सब दूसरे ऋषि मुनि कथा श्रवण कर रहे हैं। वो सूत गोस्वामी जैसे ही आए योग उनका यज्ञ समाप्त कर दिया,
88,000 ऋषियों ने एक मत होकर कहा कि आप बैठिए और कथा कीजिए, हम भगवान के विषय में श्रवण करना चाहते। और आज का मूर्ख बोलता है कथा बस 10 मिनट की होनी चाहिए, 15 मिनट की होनी चाहिए, उसके बाद बस। ये कथा तो कंटिन्यूस होनी चाहिए, नित्यम भागवत सेवया। यही वास्तव में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं 10.9 में, मत चित्ता मत कथा प्राणा बोधयंतः परस्परम कथयंतश्च माम नित्यं तुष्यन्ति च रमन्ति च। जो वास्तव में मेरे भक्त होते हैं उनका एक ही काम होता है, क्या करते हैं? कथयंतश्च माम नित्यं, कंटिन्यूस मेरे बारे में बात करते हैं, एक दूसरे को बोध कराते हैं, और उसी में तुष्यन्ति, आनंद उनको उसी में आता है। ये नहीं सोचते हैं कि कब एक घंटा समाप्त हो जाएगा और ये कथा खत्म होगी, नहीं, वो तुष्यन्ति च रमन्ति च, उसी में उनको आनंद आता है। तो उनका मन, जैसे जैसे हम कथा श्रवण करते हैं तो कथा के प्रति हमारी रुचि बढ़ती जाती है, और भी दिल करता है कि हमें और भी भगवान के विषय में श्रवण करना है, और भौतिक आसक्ति समाप्त। ये कथा का रिजल्ट है, जैसे जैसे आप श्रवण करते हो, ऐसा नहीं भौतिक आसक्ति, जबरदस्ती भौतिक आसक्ति को मन से निकालना पड़ेगा, नहीं, ये तो स्वतः होता जाएगा। जैसे हम लोग स्टार्ट में श्लोक पढ़ा, यत् कीर्तनम् यत् स्मरणम् यदीक्षणम् यद्वन्दनम् यत् श्रवणम् यदर्हणम्। यत् कीर्तनम्, जब उसका कीर्तन किया जाता है, यत् स्मरणम्, जब उन्हें स्मरण किया जाता है, यदीक्षणम्, जब उनके दर्शन किए जाते हैं, यद्वन्दनम्, जब उनसे उनकी वंदना की जाती है, उनको प्रार्थना की जाती है, यत् श्रवणम्, जब उनके विषय में श्रवण किया जाता है, यद् अर्हणम्, जब उनकी पूजा की जाती है, लोकस्य सद्यो विदिनोति कल्मष, हृदय के अंदर बैठे हुए सारे कल्मष जो है वो उसी समय समाप्त हो जाते हैं। हृदय के अंदर जो गंदगी है, जो भौतिक आसक्ति है, सर्व मंगलमय भगवान श्री कृष्ण के केवल स्मरण करने से, कीर्तन करने से, उनके दर्शन करने से, उनकी वंदना करने से विदिनोति कल्मष, साफ हो जाते हैं। इसीलिए जो वास्तविक बड़े बड़े मुनिगण हैं, वो यही कार्य करते रहते हैं कि रमन्ते स्म गुणानु कथने हरि, वो सदैव भगवान के गुणों के कथन में ही आनंद लेते हैं, उनको भगवान के गुणों में इतना प्रेम हो जाता है। वे कहते हैं कामी नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिया जिमी धाम तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय लागे मोहिराम। इस भौतिक जगत की कोई वस्तु मुझे प्यारी नहीं लगनी चाहिए, बस जिस तरह से एक जो स्त्री लोलुप्त होता है, जो काम वासना से भरपूर होता है, उसे स्त्री से प्रेम होता है, जिस तरह से जो लोभी होता है उसे धन से धन प्रिय होता है, उसी प्रकार उतना ही उससे करोड़ों गुना अधिक तो जो भगवान के भक्त होते हैं उन्हें भगवान की कथाओं से प्रेम होता है। तो क्योंकि उनका मन भगवान की कथाओं में ही रम जाता है, रमन्ते, तो भागवतम में बहुत ही सुंदर उदाहरण आता है, बहुत ही सुंदर कथा है। यदु महाराज जो भगवान के ही भगवान श्री कृष्ण के पूर्वज में यदु कुल में थे, तो वे एक बार कावेरी नदी के तट पर जा रहे थे और वहां पर उनको एक अवधूत व्यक्ति मिले जो बहुत ही आनंद में थे, नगन थे, उनके पास कुछ भी नहीं था, आनंद से वे बस इतना उनको रम रहे थे, आनंद में थे। तो अवधूत ब्राह्मण जो थे, अवधूत ब्राह्मण वास्तव में कौन थे? भगवान दत्तात्रेय थे। तो महाराज ने उनसे पूछा, अवधूत महाराज जो थे वास्तव में भगवान दत्तात्रेय थे, तो उनसे पूछा कि महाराज आप बताइए, हमारे पास बहुत कुछ है, धन है, वैभव है, लेकिन हम आनंद में नहीं है, संसार में कोई भी मैं देखता हूँ आनंद में नहीं होता, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप क्यों इतना, आपके पास इतना सुख इतना आनंद कहाँ है, कहाँ से आया है, आपके पास ऐसा क्या है जो आप इतने आनंदित हैं? वास्तव में ये कथा भगवान श्री कृष्ण भागवतम में उद्धव जी को बताते हैं, यानी कृष्ण स्वयं दत्तात्रेय के अवतार, दत्तात्रेय जी जो है वो कृष्ण के अवतार है और स्वयं अपने अवतार की कथा उद्धव जी को बताते हैं कि वो अवधूत ब्राह्मण बताते हैं महाराज यदु को कि मेरे 24 गुरु हैं और उनके द्वारा जो मैंने ज्ञान प्राप्त किया है उसी के द्वारा मैं आनंदित। ऐसा नहीं कि 24 गुरुओं से उन्होंने दीक्षा ली थी, बस उनसे सीखा है, कुछ ज्ञान प्राप्त किया है, तो बहुत सारे गुरुओं के विषय में 24 गुरुओं से जो उन्होंने सीखा उनके विषय में बताते हैं। यहाँ पर एक उदाहरण हम यहाँ पर देंगे कि उन्होंने कहा क्योंकि मेरा चित्त स्थित हो गया है। और कैसे हुआ, उन्होंने एक गुरु के विषय में बताया कि मेरा एक गुरु है वो जो बाण बना रहा था, बाण बनाते हैं ना, जो बाणों को तैयार करते हैं, तो वो क्या करते हैं, पहले लोहे को गर्म करते हैं, फिर उसको काटते हैं, उसकी नोक को सीधा करते हैं, तो उसमें इतना व्यस्त था, इतना ज्यादा वो अपने कार्य में आनंद ले रहा था, आनंद से वो कार्य कर रहा था, और उसके साइड से वहीं पर जहां पर उसकी वो कार्य कर रहा था उसकी शॉप के पास, उस दिन राजा की शोभा यात्रा निकल रही थी। राजा की शोभा यात्रा में हजारों लोग थे, बैंड बाजे बज रहे थे, शोर हो रहा था, कुछ लोग है ना वो पटाखे फोड़ रहे थे, बहुत ज्यादा शोर की आवाजें आ रही थी, लेकिन वो ध्यान से अपने कार्य में लगा रहा था और ध्यान से दत्तात्रेय महाराज देख रहे थे उनको कि कितना ध्यान से अपना कार्य कर रहा है, एकाग्रता के साथ जब अपना कार्य कर रहा था। तो शोभा यात्रा खत्म होने के बाद दत्तात्रेय ने जाकर उनसे पूछा बाण बनाने वाले से कि आप बताइए कि यहाँ से अभी क्या गुजरा, आपने देखा कुछ, इतने सारे बैंड बाजे, इतना सारा यहाँ से शोरगुल हो रहा था, आपने देखा? तब उसने कहा नहीं, मुझे नहीं पता यहाँ से कौन गुजरा, पूरा राजा की शोभा यात्रा यहाँ से गुजर रही थी, इतना शोर हो रहा था, इतने पटाखे फूटे, आपने कुछ नहीं देखा? बोला नहीं, मैंने सच्ची में कुछ नहीं देखा, मैं तो अपना कार्य कर रहा था। तो उस समय महाराज दत्तात्रेय कहते हैं कि जब भौतिक कार्य में भी इस प्रकार से मन लगाया जा सकता है, तो भगवान के जप में, भगवान की कथा में, भगवान के कीर्तन में जिसका मन रम जाता है, तो फिर संसार कैसे याद आ जाएगा उसको। जब भौतिक कार्य में भी रहकर इंसान को इतनी आनंद इतना प्राप्त कर सकता है, इतना उसके अंदर रम जाता है, तो फिर जब वो भगवान के विषय में सोचेगा तो चाहे संसार में उसके ऊपर कितना ही कष्ट आएगा तो वो कष्ट उसको कुछ भी विचलित नहीं कर सकेगा। तो इसीलिए मैं आनंदित हूँ क्योंकि मैं भगवान के अंदर पूरा का पूरा मन लगा हुआ है। फिर मुझे कुछ प्राप्त होता है या नहीं होता है इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि मैं यहाँ पर आनंद से बैठा हूँ, मेरे पास कोई सुविधा है या नहीं है, क्योंकि मन भगवान में एकाग्र हो गया। वास्तव में भक्तों, भक्ति में इतना आनंद मिलता है जितना कि भगवान बनने में भी नहीं मिलता। भगवान को भी उतना आनंद नहीं आता है जितना कि भक्त को आनंद आता है भगवान की भक्ति करने में। भगवान को भगवान बनकर इतना आनंद नहीं आता, इसीलिए तो भगवान ने सोचा मेरा तो घाटा हो रहा है, ये भक्त मेरी भक्ति करके इतना आनंदित हो रहे हैं, इतना उस भक्ति के अंदर रम रहे हैं, इतना भक्ति और प्रेम में तड़प रहे हैं और मुझे वो तड़प नहीं प्राप्त हो रही है, मुझे वो सुख नहीं आ रहा है जो मेरे भक्तों को आ रहा है। यही कारण है कि स्वयं भगवान को महाप्रभु के रूप में, भक्त के स्वरूप में इस भौतिक जगत में आना पड़ा कीर्तन करने के लिए। वो कृष्ण स्वरूप में इस तरह से भक्ति का आनंद नहीं उठा सकते थे, कृष्ण स्वरूप में जब वो कृष्ण बने होते, खाली महाप्रभु ना बने होते, खाली कृष्ण ही रहते, तो वो भक्ति का सुख, विरह का जो ये ताप है वो कैसे सहन करते या इसको कैसे महसूस करते। भगवान सभी रसों के आस्वादन करता है, भगवान रसो वैश्य, वो सारे रसों के आस्वादन करने वाले हैं, इसलिए जो भक्ति का रस है उसको आस्वादन करने के लिए वो महाप्रभु बन के आए। और भक्त बनकर अपने ही विरह में रोते थे, वो अपने ही विरह में, अपने नाम में इतना खो जाते थे कि उनको अपने शरीर की कोई सुध-बुध नहीं रहती थी, जो सात्विक विकार थे उसका आनंद लेते थे। तो वास्तव में भक्ति जो है उसके अंदर इतना आनंद है कि भगवान भी वो आनंद लेने के लिए भक्त बनकर इस भौतिक जगत में आते हैं। अनुवाद देखिए, हे राजा परीक्षित, मुख्यतः सर्वोच्च आध्यात्मिकवादी जो विधि विधानों एवं प्रतिबंधों से ऊपर हैं, वे भगवान का गुणगान करने में आनंद का अनुभव करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि सर्वोच्च आध्यात्मवादी मुक्त जीव होता है, अतएव वह विधि विधानों की सीमा में नहीं आता। ऐसा नवसिख्या जो आध्यात्मिक स्तर तक ऊपर उठने का इच्छुक है, वह विधि विधानों के अंतर्गत गुरु द्वारा मार्गदर्शित होता है। इसकी तुलना ऐसे रोगी से की जा सकती है जिसका उपचार चिकित्सा की परिधि के अंतर्गत विधि विविध प्रतिबंधों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः मुक्त आत्मा भी दिव्य कार्यकलापों का वर्णन करने में आनंद लेते हैं, जैसा कि ऊपर बताया जा चुका है। चूंकि नारायण हरि या भगवान भौतिक सृष्टि से परे हैं, अतः उनके रूप तथा गुण भौतिक नहीं हैं। सर्वोच्च आध्यात्मवादी या मुक्त जीव अपने दिव्य ज्ञान के उन्नत अनुभव द्वारा उनकी अनुभूति करते हैं, अतएव वे भगवान की लीलाओं के दिव्य गुणों के कथन में रुचि लेते हैं। श्रीमद् भगवद गीता 4.9 में भगवान घोषित करते हैं कि उनका प्राकट्य तथा उनके कार्यकलाप सभी दिव्य हैं। जन्म कर्म चमे दिव्यम। सामान्य व्यक्ति माया के वशीभूत होने के कारण यह मान लेता है कि भगवान भी हमारी ही तरह के हैं, अतएव वह भगवान के नाम रूप आदि की दिव्य प्रकृति को मानने से इनकार करता है। सर्वोच्च आध्यात्मवादी किसी भी भौतिक वस्तु में रुचि नहीं रखता, अतएव भगवान के कार्यकलापों के प्रति रुचि रखना इस बात का निश्चित प्रमाण है कि भगवान इस भौतिक जगत में हमारे जैसे नहीं हैं। वैदिक ग्रंथों में भी इसकी पुष्टि हुई है कि परमेश्वर एक हैं, किंतु वे अपने अनन्य भक्तों के साथ अपनी दिव्य लीलाओं में लगे रहते हैं और उसी के साथ साथ बलदेव के अवतार के रूप में, परमात्मा के रूप में वे सभी जीवों के हृदय में विद्यमान रहते हैं। अतएव दिव्य अनुभूति की चरम सिद्धि भगवान की दिव्य गुणों के श्रवण तथा अनुकथन में है, ना कि भगवान के निराकार ब्रह्म के पहलू रूप में तदाकार होने में, जिसकी निर्विशेषवादी कामना करते हैं। वास्तविक दिव्य आनंद का अनुभव तो दिव्य भगवान की महिमा गायन में किया जाता है, उनके निर्विशेष पहलू में स्थित होने की अनुभूति में नहीं। किंतु कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सर्वोच्च आध्यात्मवादी ना होकर उनसे निम्न स्तर पर होते हैं और जो भगवान के दिव्य कार्यकलापों के वर्णन में रुचि नहीं दिखाते, प्रत्युत वे भगवान के ऐसे कार्यकलापों की व्याख्या भगवान में तदाकार होने के उद्देश्य से करते हैं। तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी ने ये बता दिया कि वास्तविक जीवन की सफलता किस बात में है कि हमें भगवान के विषय में श्रवण करना है, भगवान के विषय में कीर्तन करना, इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। कुछ लोग बोलते हैं कि ये हरे कृष्ण वाले हैं, वो सदा बस एक ही काम करते हैं, या तो भगवान के पवित्र नाम का जप करेंगे और या फिर भगवान की कथाओं की इतनी बड़ी बड़ी घंटों तक कथाएं चलती रहेंगी। लेकिन वास्तव में यही शास्त्र का मत है, यही सुखदेव गोस्वामी भागवतम में बता रहे हैं कि जो बड़े बड़े वास्तव में आध्यात्मवादी जो मुनि हैं, वो यही करते हैं। क्या करते हैं? रमन्ते स्म गुणानुकथने हरि। यही वास्तविक सफलता है जीवन की, कि सदैव भगवान के गुणों का कथन किया जाए, उनका श्रवण किया जाए, उनके पवित्र नाम का जप किया जाए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कृपया साथ रहिएगा, मेरे लिए प्रार्थना करना मत भूलिएगा कि मैं अपनी साधना और सेवा को अच्छे तरीके से कर सकूं। हरे कृष्ण।